قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیحی کہلوانے والے لوگوں کے بیچ میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کرسمس منایا جائے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تاریخ جو اس سے جڑی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ساری رسومات اور تقریبات اور عبادات جو کرسمس کے نام سے منعقد ہوتی ہیں یا منائی جاتی ہیں، کیا وہ جائز بھی ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور بہت سارے ہیں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سو یہ اختلاف پایا جاتا ہے اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو آج ہم سیکھیں گے عید ولادت المسیح کا مقدمہ، دا کیس فار دا کرسمس۔ سوالات کی صورت میں ہم اسے سیکھیں گے۔ پہلا سوال، کیا تورات میں درج خداوند کی مقرر کی ہوئی عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید منائی جا سکتی ہے؟ کئی لوگ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، مسیح پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو صرف بیبلیکل فیسٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی ہم صرف وہ عیدیں مناتے ہیں جن کا بائبل میں حکم دیا گیا ہے، یا خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تورات میں جو بنی اسرائیل کو عیدیں منانے کا حکم تھا، ہم تو صرف وہ عیدیں مناتے ہیں۔ سو اس پہ غور کریں گے کہ کیا یہ درست ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ شریعت میں جو عیدیں درج ہیں ان کے علاوہ بھی عیدیں منائی جا سکتی ہیں کہ نہیں۔ بائبل میں سے اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ عید پوریم اور عید تجدید تورات میں درج نہیں، لیکن یہودی آج تک مناتے ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی ان میں شرکت کی، اور خاص طور پر نئے عہد نامے میں عید تجدید کے وقت خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں موجود ہونے اور وہاں لوگوں سے بات کرنے، لوگوں کو اپنی بابت بتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عید پوریم موسیٰ کی معرفت حکم کے طور پر مقرر کی جانے والی عید نہیں، بلکہ آستر کے زمانے میں جب بنی اسرائیل غلامی میں تھے تب یہ عید مقرر کی گئی، مرد کی، اور آستر کے زمانے میں یہ مقرر ہوئی، وہ عید آج تک منائی جاتی ہے۔ شریعت میں اس کا ذکر نہیں، لیکن عید منائی جاتی ہے، گفٹس دیے جاتے ہیں، اس میں تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ عید تجدید کیا تھی؟ عید تجدید غلامی کے دور میں جب ہیکل ناپاک کر دی گئی، رومی حاکم نے ہیکل ناپاک کر دی، تو مکابیوں کے زمانے میں انہوں نے ہیکل کو پاک کیا، ری ڈیڈیکیٹ کیا۔ یاد کرتے بن اسرائیل کہ ہم نے اس دن خدا کی ہیکل کو جو ناپاک کر دی گئی تھی اسے پھر سے پاک کیا، اور ہم نے اس میں عبادتیں کرنا شروع کی، اور یسوع یہ عید منا کر ہمیں یہ ایک راہ دیتا ہے کہ موسیٰ کی مقرر کی ہوئی عیدیں یا وہ عیدیں جو خدا نے موسیٰ کی معرفت مقرر کروائیں ان کے علاوہ بھی عیدیں منائی جا سکتی ہیں۔ سو عیدیں جو قوم مل کے خدا کی بڑی قدرت کے کاموں کو یاد کرتے ہوئے اپنی قومی زندگی میں، ان نیشنل لائف، کسی بڑے واقعے کو یاد کرتے ہوئے اگر ہم کوئی دن مقرر کر لیں کہ یہ دن ہم سیلیبریٹ کریں گے ایک قوم کے طور پر، ایماندار کلیسیا کے طور پر، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ منایا جا سکتا ہے کرسمس، عید ولادت المسیح منائی جا سکتی ہے، اگرچہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں، حکم نہیں ہے، لیکن منائی جا سکتی ہے، کیونکہ عید تجدید کا حکم نہیں تھا منانے کا، پوریم کا حکم نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل مناتے اور یسوع نے ان میں شرکت کی۔ کیا کرسمس منانے والے خدا کے نافرمان ہیں؟ اعتراض اٹھتا ہے مسیحیوں پر، مسیحیوں کی طرف سے ہی جو خود کو مسیحی کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں۔ कि क्रिसमस मनाने वाले, मसीह की विलादत का जश्न मनाने वाले नाफरमान हैं खुदा के। वो ईदें जो खुदा ने मुकर्रर की वो तो नहीं मनाते, और ये इंसान की बनाई हुई ईदें मनाते हैं। तो देखते हैं रोमियो 14:7 पौलुस रसूल की मार्फत रूहुल कुद्स ने ये हमारी रहनुमाई के लिए लिखवाया कि अगर कोई किसी दिन को मनाता है, अगर किसी की नजर में कोई दिन ज्यादा अहम है तो कोई बुरा नहीं है, और अगर कोई उन दिनों को अहम नहीं समझता, किसी और दिन को अहम समझता है, तो फिर भी गुनाह नहीं है। अगर हम क्रिसमस मनाते हैं और हमारी सोच यह है कि हम यह दिन अपने मुनज्जी खुदावन यसु मसीह की आमद की खुशी में मना रहे हैं, हम शुक्रगुजारी में मना रहे हैं, हम खुदा की बड़ी रहमत को याद करते हुए मना रहे हैं, तो ये हम गुनाह नहीं कर रहे, खुदा के नाफरमान नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा मकसद खुदा की शुक्रगुजारी है, हमारा मकसद खुदा की रहमत को याद करना है। अगर हम कुछ करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं तो वो करना गुनाह नहीं है। हाँ, हमारा तरीका अगर गलत हो जाए, हम इसमें गलत रसूमात ऐसी शामिल कर लें जो खुदा के कलाम के मुनाफी या उलट हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम खुदा के गुनाहगार हो सकते हैं। और यकीनन आप समझ रहे हैं कि कौन सी बातें गलत हैं, गुनाह हैं, जो अगर हम क्रिसमस के नाम पे करना शुरू कर दें, बल्कि वो आम दिनों में भी अगर हम करें तो गुनाह है। सो दिल की सच्चाई से, शुक्रगुजारी के जज्बे से, और सिर्फ खुदा की आमद की खुशी में अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो इसका मनाना कोई गुनाह नहीं है, और मनाने वालों पर कोई इल्जाम ना लगाए। खुदा के फरिश्तों और इंसानों ने भी मसीह की आमद पर खुशी मनाई। खुदा ने फरिश्ते भेजे जो आके खबर दें और कहें कि यह खुशी की बिशारत है, उसका पैदा होना खुशी की बात है जो सारी उम्मत के वास्ते है, वो मसीह खुदावंद वो मुनज्जी पैदा हुआ है। और फिर फरिश्ते गीत गाकर फिजाओं में, आसमानों में खुशियां मनाते हैं, और हमें ये राह देते हैं कि हम भी खुशी मनाएं, हम भी हम्द के गीत गाएं। और चरवाहों ने ऐसा किया, जाके देखा और फिर खुदा की हम्द करते हुए लौट गए, चर्चा किया, लोगों को बताया खुशी के साथ कि हमने फरिश्ते को देखा, उससे कलाम सुना, और हमने जाके अपनी आंखों से देखा, और फिर हम खुदा की तारीफ करते हुए तुम्हें बताते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। सो फरिश्तों ने और इंसानों ने मसीह की आमद पर खुशी मनाई, तो हम भी मनाते हैं। खुदा के कलाम में इसकी राह दी गई है, इसके लिए गुंजाइश दी गई है, एक मिसाल कायम है फरिश्तों और इंसानों की, उन्होंने खुशी मनाई, हम भी खुशी मनाते हैं। सो यीशु मसीह की इस दुनिया में आमद की खुशी मनाना कोई गुनाह का काम नहीं है। क्या क्रिसमस की मुखालिफत करने वाले खुदा के नाफरमान हैं? अगर कोई नहीं मनाता तो कोई गुनाह नहीं। हमें ये फतवा नहीं देना चाहिए कि अगर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहा तो वो जी बहुत गुनाहगार हो गया, वो जी ईमान से खारिज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बाइबल में क्रिसमस मनाने के वाज़े हुक्म के ना होने के बायस क्रिसमस नहीं मनाता तो कोई गुनाह नहीं करता। रोमियो 14:2 पौलुस रसूल की मार्फत रूहुल कुद्स ने यह लिखवाया कि अगर कोई किसी दिन को नहीं मनाता, उसे नहीं मानता, उस दिन की ऑब्जर्वेशन नहीं करता, वो दिन ऑब्जर्व नहीं करता तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी है। इसका मतलब शायद यह नहीं लिया जा सकता कि वो शख्स यीशु मसीह को प्यार नहीं करता। हां, वो एक बात पे अटक गया है कि मैं वो काम नहीं करूंगा जिसका वाजे तौर पर बाइबल में हुक्म नहीं है। बड़ी बातें हैं जिनका बाइबल में वाजे तौर पर हुक्म नहीं है, लेकिन हम करते हैं। ओके, इट्स गुड, आप ना मनाएं, लेकिन ये तावील ना दें कि जी जो बाइबल में नहीं लिखा मैं वो नहीं करता। तो ये मंतक के जी बाइबल में चूंकि इसका हुक्म नहीं क्रिसमस का, इसलिए मैं नहीं मनाऊंगा, ये अपनी जात तक तो आप इस पे कारबंद रहिए, लेकिन ये सवाल खुद से भी करिए कि बाकी कितने हुक्म जो लिखे हुए हैं उनमें से कितने पूरे कर रहे हैं, और कितनी बातें आप करते हैं जो बाइबल में लिखी नहीं हुई लेकिन आप करते हैं, फिर उनसे भी बाज आ जाइए। क्या इब्तदाई कलीसिया मसीह की विलादत की ईद मनाती थी? क्या रसूलों ने ईद मनाई? क्या उनके शागिर्दों ने ईद मनाई? क्या पहली दूसरी तीसरी सदी में क्रिसमस मनाया गया? क्या यह ईद मनाई गई? इब्तदाई तौर पर कलीसिया सिर्फ मसीह की मसलूबियत और जी उठने के दिनों को अहमियत देती थी, जो यहूदी ईद फसा के वक्त मनाए जाते थे। यह दुरुस्त है कि वो मसीह खुदावन के पैदाइश के दिन की बाबत फोकस्ड नहीं थे, ये उनका मतमाए नजर नहीं था, उनकी कॉन्सेंट्रेशन मसीह की पैदाइश के दिन की तरफ नहीं बल्कि उसके मसलूब होने और उसके जी उठने के दिन की तरफ थी। और इसकी तावील यह पेश की जाती है, उलमा जो उस जमाने के लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि चूंकि गैर कौमें सालगिरह मनाया करती थी, मसीहियों में रिवाज नहीं था, या कह लें कि यहूदियों में रिवाज नहीं था, तो इसलिए अवॉइड किया गया कि हम भी पैदाइश का जश्न ना मनाएं, पैदाइश के दिन की तरफ हम तवज्जो ना करें। ये गैर कौमें करती हैं सो हम पैदाइश के हवाले से हम तवज्जो ना करें। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 25 मार्च को मसीह की मसलूबियत का दिन माना जाता था। आज हम 21वीं सदी में हैं, जब पहली दूसरी और तीसरी सदी थी तो तब ये माना जाता था कि उस वक्त जो रोमी कैलेंडर था उसे जूलियन कैलेंडर, क्योंकि वो जूलियस सीजर ने तैयार करवाया था, रोम का शहंशाह था जूलियस सीजर, उसने तैयार करवाया, और मसीह खुदावंद के इस दुनिया में आने से कुछ 40-45 बरस पहले से वो कैलेंडर राइज था। ये कैलेंडर रोमी कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर इसे कहते थे। उसमें ये 12 महीनों के नाम दिए गए और उन्हें दिनों में तकसीम किया गया, और उसके शुमार के हिसाब से ये माना जाता था कि मसीह खुदावंद की मसलूबियत 25 मार्च को हुई। यहूदी महीने की बात नहीं, ये जूलियन कैलेंडर की बात है। यहूदी महीने के हिसाब से जब निसान की 15 तारीख हुई तो मसीह खुदावंद को मसलूब किया गया, वो ईद फसा के दिन थे। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक निसान यानी उनका जो पहला महीना है उसकी 15 तारीख, और जूलियन कैलेंडर के मुताबिक उस जमाने में ये सूरज के हिसाब से कैलेंडर बनता है, जैसे हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सूरज के हिसाब से है, ये चांद के हिसाब से नहीं है, लेकिन यहूदी कैलेंडर चांद के हिसाब से था, सो वो दिन बदल जाते थे, जैसे आज भी चांद की तारीखें बदल जाती हैं। इसीलिए ईस्टर और गुड फ्राइडे, जुमा और इतवार तो फिक्स्ड हैं, लेकिन उनकी तारीखें बदल जाती हैं क्योंकि चांद के हिसाब से दिन बदलते हैं। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 25 मार्च माना जाता है कि मसीह खुदावंद की मसलूबियत का दिन था, तो इसको सेलिब्रेट करते थे। क्या बाइबल में मसीह की पैदाइश की तारीख दर्ज है? बड़ा आसान सा जवाब है, नहीं। पैदाइश की तारीख तो वाज़े तौर पर नहीं लिखी, लेकिन बाइबल में शवाहिद मौजूद हैं, शवाहिद जरूर मिलते हैं कि वो कब किन दिनों में पैदा हुआ। मत्ती की इंजील के पहले बाब से दूसरे बाब में, और फिर लूका की इंजील पहले बाब से दूसरे बाब तक, इन चार अबवाब में मसीह खुदावंद की पैदाइश के वाकयात दर्ज हैं। तो इनसे हमें सुराग मिलता है कि मसीह खुदावंद कब पैदा हुआ। दूसरी सदी में मसीही ईद विलादत अल मसीह की बाबत भी संजीदा हो चुके थे और इसकी खोज में मसरूफ थे। एक सदी गुजर गई, जब दूसरी सदी शुरू हुई तो मसीहियों ने यह सोचा कि हमें मसीह खुदावंद की पैदाइश की बाबत भी तारीख तलाश करनी चाहिए, वो किस दिन पैदा हुआ, खोज में लग गए। उलामा स्कॉलर्स ये समझते हैं कि मसीह खुदावंद की पैदाइश यहूदी ईदों के दिनों में नहीं हुई होगी, क्योंकि जो मेन ईदें हैं यहूदियों की, उनके बीच हर एक यहूदी मर्द का यरूशलेम में होना जरूरी है, लेकिन यसु की पैदाइश के वक्त मुकद्दस यूसुफ जो रास्तबाज था वो मुकद्दसा मरियम के साथ बैतलहम में था, वो यरूशलेम में नहीं था। सो इसलिए ईदों के दौरान तो वो पैदा नहीं हुआ होगा। यहूदियों की इस्म नवीसी के लिए भी किसी ईद के दिनों का इंतखाब मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि इस्म नवीसी के लिए अपने अपने आबाई शहर या गांव में जाना जरूरी था, जबकि ईद के लिए यरूशलेम में जाना जरूरी था। फसा अपने खानदान के साथ मनानी थी, अपने लोगों के साथ। तो सुराग मिलता है कि यसु तब पैदा हुआ जब कॉर्नियस हाकम के अहद में कैसर अगस्तुस के हुक्म के तहत इस्म नवीसी हुई, उनके नाम लिखे गए, सेंसस कहें या टैक्सिंग कहें या नेमिंग कहें काउंटिंग कहें। तो ये ईदों के दिनों में नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहूदियों के लिए ईदें बड़ी खास थीं, उनके लिए हैकल में जाना जरूरी था, उनके लिए अपने घर में सेलिब्रेशन जरूरी थी, वो निकल के अपने अपने आबाई गांव में नहीं जा सकते थे जैसे मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को जाना पड़ा। वो बैतलहम के रहने वाले नहीं थे, लेकिन उनके बाप दादा उस शहर से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनको जाना पड़ा। वहां के होते तो उनका घर अपना वहां पर होता, फिर उनको सराय में भी जगह ना ढूंढनी पड़ती और फिर उन्हें चरनी में बच्चा ना रखना पड़ता, उनका अपना घर वहां पे होता। तो इस्म नवीसी भी ईदों के दिनों में नहीं हुई होगी, क्योंकि इसमें यहूदी अपनी दीनी रसूमात अदा करते हैं, वो अपने घरों से दूर नहीं हो सकते थे या हैकल से दूर नहीं हो सकते थे। एक सुराग है जकरिया काहिन, जब वो हैकल में बखूर जलाने का फरीजा अंजाम देता है। जकरिया काहिन हैकल में अपनी बारी के मुताबिक बखूर जलाने की खिदमत अंजाम देता है। मेरे पास पूरा अंदराज है जब से मैं इस कलीसिया में खिदमत कर रहा हूं कि किस दिन किस शख्स ने दुआ में रहनुमाई की, किस शख्स ने तलावत में मदद की, किस शख्स ने हदिया उठाने में और गिनने में मदद की। ये मेरे पास और चर्च कमेटी के पास हमारी उर्दू कांग्रीगेशन का रिकॉर्ड मौजूद है। यहूदियों ने फरीक यानी ग्रुप्स बनाए हुए थे कि इतने दिन कौन सा गिरोह काम करेगा, ये हफ्ता कौन ग्रुप काम करेगा, ये वाले हफ्ते में कौन सा ग्रुप काम करेगा। तो जकरिया के बारे में लिखा हुआ है कि वो अबिया के गिरोह से उसका ताल्लुक था और उनके गिरोह में से इसका नाम निकला कि ये खिदमत करेगा। तो यहूदियों के पास कैलेंडर है जो दरियाफ्त हुए हैं, उस कैलेंडर के हिसाब से ये तलाश किया गया। दूसरी सदी में, तीसरी सदी में ही तलाश कर लिया गया, जब बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो वक्त सितंबर का महीना था जब जकरिया काहिन ने हैकल में खिदमत अंजाम दी। और डेट्स के बारे में कंफ्यूजन है, क्योंकि हफ्ते का एक टाइम पीरियड होता था कि पूरा हफ्ता खिदमत करनी होती थी। हो सकता है कि उसने 15, 16, 17 से शुरू करके 20, 22, 21, 23, 24 तक गया हो, ये हफ्ते पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर है कि वो तारीख 20 क्रॉस कर चुकी थी, यानी आखिरी हफ्ते के करीब था जब अबिया के फरीक की बारी आई और उसमें जकरिया ने खिदमत की। तो वो सितंबर का महीना था, और इस सितंबर के महीने में जब वो खिदमत अंजाम देकर अपनी बारी मुकम्मल करके, लूका की जिल में लिखा हुआ है कि जब वो अपने घर गया तो खुदा के फजल से उसकी बीवी हामिला हो गई, यानी सितंबर के आखिर में अलिशबा हामिला हो गई। और जब अलिशबा 6 माह के हमल से थी तो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जाता है, उससे खुशखबरी सुनाता है कि तू हामिला होगी, देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो बांज कहलाती थी वो भी हामिला है और 6वें महीने से है। यानी अलिशबा और मुकद्दसा मरियम के हमल के बीच 6 महीनों का फर्क है, और सितंबर के आखिर से अगर हम 6 महीने गिने तो मुकद्दसा मरियम को मिलने वाली खुशखबरी या उसके हामिला होने के वक्त का तायुन आसान हो जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, छह महीने मार्च के एंड में मुकम्मल हो जाते हैं जब मुकद्दसा मरियम के पास खुशखबरी आई और वो हामिला हो गई। मार्च में हामिला होने की सूरत दिसंबर में मसीह की विलादत होना दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि नौ महीने गिने जाएंगे। सो दिसंबर के आखिरी दिनों में मुकद्दसा मरियम के वज़े हमल का वक्त मुनासिब मालूम होता है। इस हिसाब से जो इब्तदाई सदियों में मसीही उलामा ने कैलकुलेट कर लिया, हिसाब लगा लिया, जमा तफरीक कर ली कि ज़करिया सितंबर के महीने में खिदमत करता है और उस महीने के आखिर में उसकी बीवी हामिला होती है, छः महीने बाद मार्च में मुकद्दसा मरियम हामिला हो जाती है और फिर मसीह की विलादत दिसंबर में फिट बैठती है। इस हिसाब से दिसंबर में सर्दी को वजह मानकर यह ख्याल के चरवाहे मैदान में नहीं हो सकते, यह कोई ठोस दलील नहीं है। चरवाहों के पास रेवर माल सर्दियों में भी होता था। मिडल ईस्ट में यह दिसंबर है और मैं इस वक्त चर्च में, यहां मेरे पास पांच लोग हैं मेरे अलावा, और हम में से किसी ने भी कोई जर्सी, कोई जैकेट, कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ, बल्कि यहां एसी चल रहे हैं। हमें जरूरत है एसी की। मिडल ईस्ट में दिसंबर में हमें एसी की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि दिसंबर में मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा ठंड हो कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, मैदान में चरवाहे बैठ नहीं सकते, वो अपनी भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकते। ये दलील इतनी मजबूत नहीं है कि जी क्योंकि दिसंबर में सर्दी होती है इसलिए चरवाहे बाहर बैठ नहीं सकते, इसलिए मसीह की पैदाइश दिसंबर में नहीं हो सकती। कुंवारी बच्चा पैदा कर सकती है, ये मान लेते हैं, तो दिसंबर में सर्दी कम क्यों नहीं हो सकती? खुदा का निजाम है, खुदा के इख्तियार में है, मौसम भी उसके हैं, दिन भी उसके, महीने भी उसके, बरस भी उसके। जब खुदा को मुनासिब लगा उसने अपने बेटे को भेज दिया, क्या वो मौसमों को आगे पीछे नहीं कर सकता? क्या वो हिद्दत या सर्दी कम ज्यादा नहीं कर सकता? क्या वो लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली घर से बाहर नहीं भेज सकता कि आज तुमने बाहर बैठना है क्योंकि फरिश्ते उतरेंगे? खुदा की मर्जी है। अगर वो कुंवारी से अपने बेटे की विलादत करवा सकता है तो वो दिसंबर में क्यों नहीं करवा सकता? आज 2020 है, जब 204 था, ये 204 जब होता है तो ये तीसरी सदी बनती है। सन 204 में रोम के हेपोलाइटस, ये आदमी का नाम है, ये एक आलिम है जो किताबें लिखा करते थे, मसीही आलिम। और सन 221 में अफ्रीका के तारीख नवीस जूलियस उसका नाम था, उसने अपनी किताबों में लिखा है कि 25 मार्च को मुकद्दसा मरियम ने खुशखबरी पाई, वो हामिला हुई, यानी मार्च के एंड में वो हामिला हो चुकी थी। ये दो लोग लिखते हैं सन 204 में और 221 में अपनी किताबों में कि ये मसीहियों का अकीदा है, ये मसीहियों का मानना है, ये मसीही कलीसिया में राइज है ये बात कि 25 मार्च को मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया और वो हामिला हो गई। रूहुल कुद्स की कुदरत से, खुदाए कादर के कुदरत के साया डालने के सबब से वो 25 मार्च को जब खुशखबरी हासिल करती है, खुशखबरी रिसीव करती है, तो वो हामिला हो जाती है। दूसरी और तीसरी सदी में मसीही उलमा इस बात पर कायल होते जा रहे थे कि मुकद्दसा मरियम 25 मार्च को हामिला हुई और मसीह की विलादत 25 दिसंबर को हुई, यानी 9 महीने पूरे होने पर। क्या 25 दिसंबर बुत परस्तों के त्यौहार का दिन था जिससे क्रिसमस की शक्ल दे दी गई? बहुत एतराज किया जाता है, जी नहीं, 25 दिसंबर तो रोमियों के देवताओं के दिन थे, इसलिए जब रोमियों ने मसीहियत कबूल की तो उन्होंने अपने देवताओं की प्रस्तिश के दिनों को, उनकी ईदों को मसीहियत का लिबास पहना दिया और अपने देवता के दिन को क्रिसमस बना डाला और हम सारे अनजाने में जी हम उन देवताओं का दिन मना रहे हैं। आइए इस पे बात करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। रोम में एक देवता सैटर्न का त्यौहार 17 से 23 दिसंबर तक मनाया जाता था। बहुत अरसा ये पहले 17 से 20 तक मनाया जाता था, फिर 23 तक कर दिया गया जी, एक्सटेंड कर देते हैं जी। लेकिन 25 तारीख नहीं होती थी, 24 से पहले खत्म हो चुका होता था उनका त्यौहार। अगर मसीहियों ने उनके देवता का दिन लेना होता, अगर किसी ने उनके देवता के दिन को क्रिसमस का नाम देना होता तो वो 17 से 23 तक की तारीख देते, 25 की। और उस वक्त तो मसीहियों का ईमान इतना मजबूत था, इतना गहरा था कि वो जाने दे रहे थे खुदा के कलाम के लिए, अपने ईमान के लिए। वो कैसे समझौता कर सकते थे रोमी बुतपरस्तों की ईदों के साथ? वो कैसे मान सकते थे उनकी ईदें जब वो कहते थे कि ना कैसर हमारा खुदावंद है और ना हम तुम्हारे देवताओं को मानते हैं। वो खुदावंद यस्सु पर ईमान रखने की वजह से जाने दे रहे थे, अपने बच्चे कुर्बान कर रहे थे, औरतें कुर्बान हो रही थी, उनके घर जल रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी बात पे समझौता नहीं किया रोमियों के साथ। तो ये ईद का दिन सिलेक्ट करने में समझौता कर लेना था कि ठीक है हम आपके वाला दिन ले लेते हैं, जबकि उस दिन उनके देवता की कोई ईद थी ही नहीं। वो तो मनाते थे 17 से 23 तक, तो 24-25 तो खाली थी। और जकरिया काहिन के हिसाब से फरिश्ते के मुकद्दसा मरियम के पास आने की तारीख का हिसाब लगाते हुए 25 दिसंबर चुना गया। अगर उन्होंने देवताओं की उस किसी ईद को क्रिसमस का नाम देना होता तो वो 17 से 23 तक के बीच कोई तारीख देते। 274 में यानी 221 के तकरीबन 53 साल बाद बादशाह ने सूरज देवता की प्रस्तुति करने के लिए एक मंदिर बनवाया और 25 दिसंबर को उसकी ईद का ऐलान किया। मसीही दूसरी सदी से यह मान रहे हैं कि यीशु 25 को पैदा हुआ। 204 और 221 की किताबें जो इस वक्त दुनिया में दरियाफ्त हो चुकी हैं उनमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 25 मार्च को कंसीव हुआ, यानी मुकद्दसा मरियम हामिला हुई, और उसके हिसाब से 25 दिसंबर को वो पैदा हुआ। उसके 53 साल बाद, यानी हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर तलाश करें, करीब तरीन का फासला अगर नापे, तो 53 साल के बाद रोमी बादशाह ने 25 दिसंबर का ऐलान किया। और गुमान यह है कि चूंकि मसीही 25 दिसंबर को मसीह खुदावंद के साथ जोड़ चुके थे, उसने कहा कि मैं इनका दिन खराब करने की कोशिश करता हूं, मैं इसमें अपना देवता शामिल कर लेता हूं। अफ्रीका के जूलियस तारीख नवीस की किताब के लिखे जाने के 53 साल बाद ये दिन उसने 25 दिसंबर को शुरू किया, सूरज देवता की प्रस्तुति। तो पहले से मसीहियों का 25 दिसंबर तय था। मसीही चूंकि उस वक्त अकलियत थे, मसीही छुपे होते थे, मसीही एलानिया कोई तकरीब नहीं कर सकते थे, वो घरों में इबादतें करते, वो गारों में इबादतें करते, वो छुप छुप के जंगलों में इबादतें करते थे, वो अंडरग्राउंड इबादतें करते थे, क्योंकि बादशाह ऐलान करता कि जहां मसीही मिले उन्हें पकड़ो, उन्हें मारो। तो मसीही तो सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते थे पहली सदियों में अपनी कोई भी ईद। यीशु मसीह के नाम से तो उनको ईमान रखने की इजाजत नहीं थी, ईमान का इजहार करने की इजाजत नहीं थी, तो वो कैसे सेलिब्रेट करते। लेकिन बात फैल चुकी थी ये 25 दिसंबर इनके नजदीक बड़ा अहम है, क्योंकि इनका ईमान है कि 25 दिसंबर को इनका खुदावंद पैदा हुआ। तो रोमी बादशाह ने कई बरस बाद, आधी सदी के बाद, उसने कहा कि मैं इस दिन को चोरी कर लेता हूं, मैं इसे सूरज देवता के नाम कर देता हूं। सो मसीहियों ने किसी रोमी देवता के दिन को क्रिसमस का लिबास नहीं पहनाया। पहले से दिन तय था, रोमियों का दिन बाद में बना। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मेरा भाई है, मेरे चचाजाद भाई हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ یکم مئی ہے. اب یکم مئی ساری دنیا میں کیا سیلیبریٹ ہوتا ہے؟ مزدوروں کا دن. تو کیا اب میں کہہ دوں کہ دنیا بھر نے میرے اس بھائی کا جنم دن چرا لیا ہے مزدوروں کے دن کے طور پر، جبکہ وہ تو بہت پہلے سے مزدوروں کا دن چلا رہا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ میرا وہ بھائی اس دن پیدا ہو گیا. اس کا جنم دن اور مزدوروں کا دن ایک ہی تاریخ کو پڑ جاتے ہیں. مسیحیوں نے 25 دسمبر پہلے طے کر لیا تھا کہ مسیح کی پیدائش کا دن ہے، اور رومی حاکم نے، رومی بادشاہ شہنشاہ نے اپنے دیوتا کا دن بعد میں مقرر کیا تھا، اور غالب امکان یہ ہے کہ مسیحیوں کو تنگ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا دن نہ منا سکے. کانسٹینٹائن بادشاہ جب مسیحی ہو جاتا ہے تو اس کے مسیحی ہونے کے بعد مسیحیوں کو اجازت ہو گئی، کیونکہ وہ شہنشاہ تھا، وہ مسیحی ہو گیا. پہلی بار کتابوں میں یہ بیان ملتا ہے کہ 336 میں پہلی بار باقاعدہ طور پر، سرکاری طور پر کرسمس سیلیبریٹ کیا گیا، اسی تاریخ پر جو دوسری صدی میں، تیسری صدی میں طے ہو چکی تھی، لوگ ایمان رکھتے تھے. چوتھی صدی میں آ کے باقاعدہ طور پر جب حکومت بن گئی، جب مضبوط ہو گئے مسیحی، جب چرچ مضبوط ہوتا چلا گیا، ایک پورا سسٹم ڈیویلپ ہو گیا، تو تب اعلان کیا گیا کہ آؤ ہم مسیح کے پیدا ہونے کی عید بھی سیلیبریٹ کریں. سو ہم نے، مسیحیوں نے کوئی رومی دیوتا کا دن نہیں چرایا، ہم نے کسی سورج دیوتا کے دن کو کرسمس کا لباس نہیں پہنایا. مجبوری تھی، پہلے نہیں منایا گیا کیونکہ حکومت مخالف تھی، دکھ تکلیفیں اظہار آسانی تھی، لیکن جب آسانی ہوئی تب منانا شروع کیا اور منایا جاتا رہے گا. بعض کلیسیائیں 6 یا 7 جنوری کو کرسمس مناتی ہیں، ہم 25 دسمبر کو مناتے ہیں. آرتھوڈاکس کلیسیائیں یہ 6 یا 7 جنوری کو مناتی ہیں. وجہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک کیلنڈر جولیس سیزر نے شروع کروایا، اس نے بنوایا اس کے نام سے جولین کیلنڈر، اور پھر کوئی بہت سال بعد ایک نیا کیلنڈر بنایا گیا، کیونکہ محسوس ہوا کہ کیلنڈر ٹھیک نہیں. سو پوپ گریگری کے زمانے میں نیا کیلنڈر بنایا گیا، اسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، جو آج پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. جب جولین کیلنڈر کی جگہ گریگورین کیلنڈر آیا تو دنوں کا جو فرق محسوس ہو رہا تھا اسے ریورس کیا گیا. تو تقریباً 10 سے 12 دنوں کا یا 13 دنوں کا فرق انہیں مل رہا تھا، جو انہوں نے کیلکولیشنز کر کے، حساب لگا کے، تو وہ فرق مٹایا. مثال کے طور پہ جب یہ کیلنڈر رائج ہوا تو جس ملک نے اسے اپنایا اس کے ہاں تاریخ جولین کیلنڈر کی تھی 1 دسمبر، لیکن جب گریگورین کیلنڈر آ گیا تو اگلا دن 13 دسمبر ہو گیا، یعنی وہ 12 دن بیچ میں سے ختم کرنے پڑے کیلنڈر کو درست کرنے کے لیے. تو وہ جو 12-13 دنوں کا گیپ پڑا، کلیسیائیں جو آرتھوڈاکس پرانی کلیسیاں ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اس کیلنڈر کے مطابق نہیں، چونکہ یہ 12 دن اب پیچھے چلے گئے ہو، 13 دن پیچھے گئے ہو، 10 دن پیچھے گئے ہو، ہم اپنے دن اس حساب سے رکھیں گے. یعنی اب پیدائش دسمبر میں نہیں، اب جنوری میں چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ نے بیچ میں سے 12 دن ہی اڑا دی ہیں، تو ڈائریکٹ 24 دسمبر سے 6 جنوری ہو گیا، تو ہم تو ادھر جائیں گے، ہم تو 6 جنوری پہ جائیں گے، ہم تو جی 7 جنوری پہ جائیں گے. تو اس فرق کی وجہ سے تاریخ میں 12 دن کا، 13 دن کا گیپ پڑ جاتا ہے. مانتے وہ بھی یہی ہیں کہ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ اس وقت 25 مارچ کو آیا تھا، تو 25 دسمبر بنتی ہے، تو 24 دسمبر کے بعد 12 دن نکال کے تو 6 جنوری آ گئی. تو انہوں نے کہا جی ہم تو 6 جنوری مانیں گے، ہم 25 دسمبر نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے بیچ میں سے وہ غائب کر دی ہے. تو اس وجہ سے، لیکن دن وہی مانتے ہیں کہ دن وہی ہے، لیکن کیلنڈر کے حساب سے وہ دن فرق ہو جاتا ہے. بالکل ایسا جیسے دیسی مہینے کی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے, چاند کے حساب سے کیلنڈر کی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے, اور گریگورین یعنی انگریزی کیلنڈر جو ہم جنوری سے دسمبر تک فالو کرتے ہیں اس میں تاریخ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن دن وہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے فرق محسوس ہوتا ہے, لیکن بڑی اکثریت مسیحیوں کی یہ ایمان رکھتی ہے کہ یسوع مسیح سردیوں میں ہی پیدا ہوا, دسمبر میں ہی پیدا ہوا. شواہد ہیں تاریخی طور پر, ہم نے کسی رومی دیوتا کا دن نہیں چرایا. کیا تاریخوں میں اختلاف کے باعث ہمارا کرسمس منانا غلط ہے؟ اختلاف ہے تاریخوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یسوع بہار میں پیدا ہوا, مارچ اپریل میں. کچھ کہتے ہیں جی نہیں وہ ستمبر اکتوبر میں پیدا ہوا. کچھ کہتے ہیں جی دسمبر 25 میں پیدا ہوا. کچھ کہتے ہیں جی 6 یا 7 جنوری کو پیدا ہوا. تو کیا یہ تاریخوں کا اختلاف یہ ثابت کرتا ہے کہ کرسمس منانا ہی غلط ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہم مسیح کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں, کسی دن یا دیوتا کی پوجا نہیں کرتے. ہم یہ سامنے رکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا, وہ آیا. دن ہمارے لیے اتنا اہم نہیں, ہمارے لیے مسیح کا پیدا ہونا اہم ہے. ہم تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے بعد 5 سال کا ہو جاتا ہے یا سال بھر کا ہو جاتا ہے, تو ایک دن مقرر کر کے وہ سالگرہ نہیں عقیقہ کیا جاتا ہے. اسپیشل فیسٹیویٹی ہوتی ہے, ایک اسپیشل پروگرام ارینج کیا جاتا ہے جی ہم اپنے بچے کی پیدائش یا اس کے اتنے بڑے ہو جانے کی خوشی میں ہم یہ دن منا رہے ہیں. وہ اگزیکٹلی اس کے ڈیٹ آف برتھ پہ نہیں ہوتا. کنوینئنس کے مطابق کوئی دن مقرر کر لیا جاتا ہے کہ جس میں سب کو رشتہ داروں کو دوستوں کو چھٹی ہو تو سارے شامل ہو سکیں. بحرین میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ویکینڈ پہ اپنی پارٹیز کرتے ہیں, بھلے ویک ڈیز میں, یعنی ہفتے کے عام دنوں میں اگر کوئی تاریخ پیدائش یا کسی کی شادی کی سالگرہ کی تاریخ آ رہی ہے تو وہ اسے پوسٹ پون کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں ویکینڈ تک, یعنی جمعرات یا جمعے کو یا ہفتے کو ہم وہ منا لیں گے تاکہ لوگ چھٹی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. تو یہ مان لیں کہ اگر تاریخیں ہمارے پاس درست نہیں بھی ہیں, ہم تاریخوں پہ نہ اڑیں, ہم اتنے ریجڈ اور اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ کہیں جی نہیں جی 25 کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارے پاس کون سا کوئی ایسا حساب کتاب تھا کہ جس سے شاگرد ناپ لیتے, بعد میں کاؤنٹ کیا گیا, حساب لگایا گیا کہ کب یہ واقعہ ہوا, کب یہ ہوا, کب یہ ہوا, اس حساب سے تلاش کیا گیا. تو انسانوں سے کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے, دسمبر والوں سے غلطی ہو سکتی ہے, جنوری والوں سے غلطی ہو سکتی ہے, مارچ اپریل والوں سے غلطی ہو سکتی ہے, ستمبر اکتوبر والوں سے غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ساری غلطی پہ ہوں, کوئی اور دن ہو. تو ہم دنوں کی بحث میں کیوں پڑھیں؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سارے مل کے اس جہان کے منجی خداوند یسوع مسیح کی انسان بن کے دنیا میں آنے کی خوشی مناتے ہیں ایک دن مل کر, اور یہ سیزن پورا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تیار ہو کے ہم خوشی مناتے ہیں. تو خوشی منانے میں تو فرشتے اور انسان سب شامل تھے, ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. آؤ ہم خوشی کریں, آؤ ہم عید کریں خداوند کے بڑے کرم کو یاد کرتے ہوئے. سو یہ گناہ نہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خوشی مناتے ہیں, دنوں کی پوجا نہیں کرتے, اور نہ ہم دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. کرسمس منانے یا نہ منانے کی بنیاد پر کسی کو ایمان سے خارج قرار دینا مناسب نہیں. رومیو 14 باب پھر سے یاد کرواؤں گا, پہلی 7 آیات میں کہ اگر کوئی کسی دن کو مانتا ہے, اسے آبزرو کرتا ہے, اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کی نظر میں, تو کوئی بات نہیں, وہ خداوند کے لیے کر رہا ہے نا, خداوند کا دن جان کے اس کو منا رہا ہے نا. تو اگر کوئی نہیں منا رہا تو وہ خداوند کا دن جان کے کہہ رہا ہے کہ نہیں خداوند اس میں نہیں آیا اس لیے یہ نہیں منانا. تو دونوں کا مقصد تو خداوند کے لیے ہے نا. تو کوئی بھی دن منائے, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بے ایمان ہو گئے ہیں یا وہ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں. جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی کے حامل ہیں. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو جب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں, ہم ہمیشہ کی زندگی کے حامل ہیں. جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, جب ہم میں ہمیشہ کی زندگی ہے, تو ہم کیوں ایک دوسرے کو تاریخوں کے اختلاف پہ, اپنے منانے کے طریقے انداز کے اختلاف پہ کیوں ہم ایک دوسرے کو الزام دیں, کیوں ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں؟ سب ایک دوسرے کو کھلے دل سے قبول کریں. آپ دسمبر میں مناتے ہیں میری کرسمس, آپ جنوری میں مناتے ہیں میری کرسمس, آپ مارچ اپریل میں یا سپٹمبر اکتوبر میں مناتے ہیں میری کرسمس, کیونکہ مناتے تو خداوند کی عید ہے نا. سارے دن خداوند کے, سارے سال خداوند کے, سارا وقت خداوند کا. ابتدا بھی وہ ہے, انتہا بھی وہ ہے, اول بھی وہ ہے, آخر بھی وہ ہے, ماضی حال اور مستقبل بھی وہ ہے. مسیح سب میں اور سب کچھ ہے. اس لیے اختلاف نہ رکھیں, محبت سے خوشیاں بانٹیں.